Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Andaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Srishti kahan hai? To ka brahmand mein. Ye brahmand kya hai? Isi ko keh do gular ka phal. ये सारा जो ब्रह्मांड है वो क्या है? एक गूलर का फल है। अब जैसे गूलर का फल जब कच्चा होता है तब वहां पर कुछ भी कोई चीज व्यक्त नहीं, जितने भी अनेकता जीवाणुओं की थी वो कोई वहां व्यक्त नहीं, कोई व्यष्टि भाव वहां नहीं। तो यही ब्रह्मांड की जो प्रलयावस्था कहते हो, इस ब्रह्मांड की क्या कहते हो? प्रलयावस्था, या आप अपनी सुसुप्ति मान लो। तो ब्रह्मांड की जो प्रलयावस्था वृष्टिगत से सुसुप्तावस्था, लेकिन वहां पर तो कुछ नहीं है और आवरण में सारा का सारा विद्यमान है, लेकिन फिर क्या हुआ? कहने लगे ये जीव जैसे उस गूलर के फल में जीव और उनके कर्म संस्कार और उनका ज्ञान और तद अनुकूल उनके फल का संयोग होने का अवसर, इसी को प्रारब्ध रूपी वायु कह देते। जैसे वहां हवा लगने का संयोग माने प्रारब्ध रूपी वायु, जैसे ही वहां पर उपस्थित होती है तो पुनः सृष्टि, जैसे वह गूलर का फल फट पड़ता है वैसे ही ब्रह्मांड से सृष्टि हो। तो ये किसको लेकर के हुई? जैसे गूलर के अंतर्गत जीवों के उस फल को लेकर के, उस भोग को लेकर के, और उनकी जो है उसकी हवा का संयोग आना माने उनके भोग को लेकर के जो है वह फल फट गया और अनेकता हो गई, ऐसे ही सारे ब्रह्मांड के अंतर्गत जीव के कर्म फल के भोग के अवसर को लेकर के और सारे ब्रह्मांड में ये अनेकता हो जाती। और ये तो सुनते ही रहते हो, अविद्या है, अज्ञान अनादि है और सृष्टि भी अनादि है। तो अब कब से संस्कार है इसमें तो प्रश्न की बात ही नहीं, अनादि कह के बात समाप्त हो गई, अनिर्वचनीय आदि कह दी, लेकिन वो विद्यमान है। वो कहां? ब्रह्मांड के अंतर्गत विद्यमान है। अब उस ब्रह्मांड में ये सारी क्रिया हो रही तो किसको लेकर के हुआ? तो ये जो फल का फटना है यही है इच्छण। तो वो परमात्मा में कोई इच्छा नहीं हुई। ये सब कैसे हुआ? जीव के कर्म फल भोग के अनुसार ये सारी सृष्टि हुई और सृष्टि होकर के उसमें ही अनेकत्व आदि हो गया और सारा विस्तार हो गया, लेकिन परमात्मा में कोई भी इच्छा नहीं। लेकिन ये सब हुआ कब है? तो बगैर परमात्मा की सामर्थ्य के ये सब संभव नहीं, इसलिए कह दिया गया। आप जो है गीता में पढ़ते हो कर्मानुबंधीन मनुष्य लोक, ये सब कहां है? जड़ें तो वहां बतला ली, पहले तो ऊर्ध कह दिया और फिर कह दिया क्या है? कर्मानुबंधी, सारे के सारे जीवों की जड़ें कहां हैं? तो कहने ने कर्म रूपी मिट्टी में बनी, उनके सारे संस्कार, उन कर्मों के संस्कार अर्थात अविद्या काम कर्म के संस्कार उसके साथ जब तक पड़े हैं तब तक ये सब कुछ होता है। इसलिए उसको हम ईक्षण करके कहें तो ईक्षण उसमें वास्तव में नहीं है। ये जीव के काम कर्म संस्कारों का जब फल भोग होने का समय आता है तद अनुकूल ये सारी सृष्टि आदि होती, अनेकता आदि होती, ईक्षण आदि होता है। परमात्मा में वास्तव में अपनी निजी कोई इच्छा नहीं, और नहीं तो इतना विरोध आएगा। गीता भगवान कहते न मे कर्म फले स्प्रहस्ति, है? मेरी जो है किसी भी कर्म के फल में स्प्रहा नहीं, इसलिए मेरे को कोई कर्म लिपायमान। अब ऐसा यदि ज्ञान यदि हो जाए जीव को भी जो व्यष्टि भाव में है, तो अब उस व्यष्टि भाव के आवरण को हटा दे, व्यष्टि भाव में जो अज्ञान आया उस मात्र को हटा दे, तो ईश्वर नहीं होगा, क्या होगा? ब्रह्म ही होगा। तब वहां ईश्वर आदि की स्थिति को प्राप्त होगा, ऐसा नहीं। ये ईश्वर आदि की प्राप्ति तो सापेक्ष उपासना में है, लेकिन ज्ञान रूपी जब स्थिति में पहुंच जाते उपासना से अंतःकरण शुद्ध होते, तो वहां पर क्या है? तब वो ब्रह्म रूप है, ये सब कहना चाहिए। और जब ऐसा है तब ईश्वर की सृष्टि उसे बाधित नहीं कर पाती। तब जिसे ईश्वर की सृष्टि कही गई, वह ईश्वर की सृष्टि में रहते हुए भी उससे बाधित, और जब बाधित नहीं होता है तभी उसे जीवन मुक्ति की संज्ञा, नहीं तो जीवन मुक्त होगा ही नहीं कोई, इसलिए तब उसको जीवन मुक्त की संज्ञा दे दी जाती। और फिर जो है उसका प्रारब्ध अनुसार जो के अनुसार जब शरीर भी प्रारब्ध के समाप्त होने पर समाप्त हो जाता तो विदेह मुक्त कह दे। तो इसलिए यहां पर संकेत ये कर रहे हैं कि उपासना के द्वारा क्या होगा? अंतःकरण विशुद्ध होगा, मल आदि की निवृत्ति होगी, उसी में विवेक आदि वैराग्य आदि का उदय होगा, तब इस ज्ञान की भूमिका में पहुंचोगे। सभी अभी ज्ञान की भूमिका के लायक नहीं, इसलिए ज्ञान की भूमिका के लिए अधिकारी की दृढ़ता होने के लिए पुनः उपासना की चर्चा की। लेकिन यहां जिज्ञासु है और कुछ उपासना कर चुका है, तो इसलिए संकेत किया गया कि उसे कैसी उपासना करनी है। तो कहने लगे ओंकार की उपासना करनी है, जो मूल प्रतीक है, मुख्य प्रतीक है, ऐसे उसकी उपासना करनी। लेकिन उसकी उपासना कैसे करे? तब उसके लिए संकेत किया कि समस्त लोक के अंतर्गत पांच अधिकरणों में उसको विभाजित करके बतलाया कि सर्वत्र कार उकार मकार आदि की जो है भावना करे। तो पृथ्वी में आकार की भावना करे, देव में जो है उकार की भावना करे, संधि करके सूत्र आदि कह दिया जिसके मध्य में ही सब कुछ विद्यमान है, वहीं पर सब कुछ हो रहा है, इसलिए कहा उस संधि के अंतर्गत क्या है? आकाश की भावना करे। उस आकाश में मन वही सबका आश्रय, जीव का भी आश्रय वही है। तो इसलिए संकेत किया कि वही इस प्रकार से यहां करते हुए फिर आगे दूसरे अधिकरण की बात कर रहे हैं, माने अधिलोक फिर अधिज्योतिष। अधिज्योतिष की चर्चा करते हुए आगे कहा कि अधिज्योतिष में कैसे करें, जो अधिज्योतिष रूप अधिकरण है, तो उसको लेकर के संकेत कर रहे हैं कि अग्नि को अकार वर्ण माने प्रथम वर्ण मानो। अग्नि क्या है? कहा अकार वर्ण, जैसे वहां प्रथम वर्ण अकार है वैसे ही अग्नि को स्वीकार करो। और कहने लगे उत्तम वर्ण जो परवर्ण है वो क्या है? तो उसके लिए कह दिया आदित्य उत्तर रूपम, और सूर्य जो है वो क्या है? का उत्तर रूप है। तो अग्नि को प्रथम वर्ण, सूर्य को उत्तर वर्ण, और दोनों के मध्य में दोनों वर्णों को लेकर के क्या होना, जैसे दोनों वर्णों के उच्चारण के बल को लेकर के संधि होती है, वैसे ही यह दोनों वर्णों को लेकर के जो दोनों वर्ण हमने अग्नि रूप और उस आदित्य रूप माने, इनके मध्य में संधि क्या है? तो संधि को क्या बतलाया? आपह। संधि क्या है? आपह। और उस संधि का संधान करने वाला कौन है? जैसे वहां वायु बतला दिया, तो यहां क्या बतला रही? विद्युत। अब ये कैसे समझ में आए? आदित्य जो है, सूर्य जो है वो भी प्रकाशक प्रधान है, अग्नि जो है वो भी उसके अंदर दाहकत्व आदि धर्म, उष्णत्व आदि धर्म रहते हैं। इन दोनों को हमने ग्रहण किया। अग्नि पृथ्वी पर रहती है, अग्नि कहां रहती? पृथ्वी पर रहती। और आदित्य कहां रहता है? अंतरिक्ष में रहता है। और दोनों के मध्य में सत्ता किसकी मान ली? संधि करके दोनों का एक रूप करके क्या मान लिया? का जल। आप का ये कैसे? ये तो कहा जा रहा है ऐसी भावना करें, ये भावना कैसे होगी? तो देखो, जब भी वृष्टि होती है तो वृष्टि का रूप क्या है? वृष्टि का रूप ही है कि वह जो है सूर्य की किरणों के द्वारा उस जल को वाष्पीकरण करके और बादलों के रूप में एकत्रित होने पर फिर क्या होता है? कहा तब वृष्टि होती है। तो मध्य में ये जल कहां से आ गया? और आ ही नहीं गया। एक मंत्र आता है वेद के अंतर्गत, तो वहां पर चर्चा की गई, सोम नाम दिया गया। और सोम नाम क्या है? तो माया से उपहित परमात्मा का नाम भी सोम है, उमा सहितम इति सोम। और सोम चंद्रमा आदि को भी कह देते हैं, लता विशेष के रस को भी कह दे, लेकिन वो सोम प्रत्येक तत्व के अंतर्गत विद्यमान है। न्यूनाधिकता से पृथ्वी में भी है, जल में भी है, और जो है तैल आदि में भी है, माने वनस्पतियों में भी है, औषधियों में भी है, पशुओं में भी है, मानव में, सर्वत्र उसकी सत्ता विद्यमान है। तो सूक्ष्मतया वो सोम सर्वत्र विद्यमान है। अब जो है मनुष्य का भी जीवन जो है वो किसके द्वारा? नारम नीरम भुवन मुदकम जीवनीयम दकंच है? रहमन पानी राखिए बिन पानी सब पानी गए न उबरे मोती मानो। तो जीवन भी पानी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मध्य में जो है, इन दोनों के मध्य में वह जल तत्व विद्यमान है। जल तत्व में ही सोम तत्व विशेष रहता है, तैलादि में विशेष रहता है, इसलिए उसको संधि रूप करके कहते हैं। और वो संधि रूप क्या है? तो वह ही सबको जोड़ने वाला भी है, जल ही सबको सत्ता देने वाला है, जोड़ने वाला। जल के बगैर जो है जुड़ाव भी होता, ये मकान बना है इसमें भी सीमेंट और सरिया आदि सब तो लगे हैं, लेकिन पानी भी है। पानी में रहने वाला जो स्नेह रूपी धर्म है वो ही इनके एकीकरण को करने वाला। इसलिए यहां भी संकेत करते हैं कि अग्नि और अग्नि के अब जो पृथ्वी पर रहने वाली अग्नि, उसके कई रूप हैं। पृथ्वी पर रहने वाली अग्नि उसके कई रूप हैं। कहीं उसे दक्षिणाग्नि कहते, कहीं गारपत्य अग्नि कहते हैं, कहीं जो है भूमज अग्नि कहते हो, और कहीं दावानल अग्नि कहते हो हैं, कहीं बड़वानल अग्नि कहते हो। तो ये अग्नि क्या है? इसके कई रूप, कई नाम। क्यों? उपाधि भेद से। जल में हो गई बड़वानली कहलाने लगी, जंगल में हो गई तो हैं दावानल कहलाने लगी, घर में हो गई गारपत्य हो गई। इस प्रकार से उसके नाम ये उपाधि के भेद से दी। लेकिन उसका मतलब है एक तेजस तत्व, उष्णत्व, और वो यहां पर भी, पृथ्वी पर भी और जौ में भी, उन दोनों के अंतर्गत एक विद्युतीकरण विद्यमान। क्या विद्यमान है? विद्युतीकरण का मतलब क्या? मने वह सूक्ष्म रेणें इस अग्नि में व्याप्त हैं, वो इस अग्नि से उठती हैं, और सूक्ष्म रेजें ही आदित्य में व्याप्त हैं, वो वहां से चलती हैं। और दोनों का जब चलना होता है तो दोनों चल करके कहीं न कहीं मध्य में मिलती हैं, और मिलती हैं तो उनके टकराहट से ही प्रकाश भी होता है और जल का भी निर्माण हो जाता है। क्योंकि उष्णता को लेकर के गैसें आदि हो जाना, उन गैसों को लेकर के ही जल आदि होना, क्योंकि अग्नि से ही जल पैदा होता है, बगैर जल के जल अग्नि के जल पैदा नहीं। इसलिए जो क्रम बतलाया, आकाश, वायु, तेज और जल, पृथ्वी, ये सब संकेत भी किए। तो यहां संकेत कर रहे हैं कि वह जो जल है, वह जो आप है, वो कब? तो दोनों के मध्य में, दोनों की संधि जब होती है, आदित्य की रेजों की और पृथ्वी के उष्णत्व की रेजों की जब संधि होती है, तो उस संधि काल में ही क्या है? कहने लगे जल उत्पन्न हो जाता। और ये जो है संधि कराने वाला कौन है, तो विद्युतीकरण, वैद्युत इसलिए कह दिया। तो मने इस प्रकार से जो है वो संधि रूप है, तो जल की भी उत्पत्ति है, जल भी होने वाला है, और वो कहां होने वाला, दोनों के मध्य में होने वाला है, और वही सबको जीवन भी देने वाला। इसलिए संकेत किया कि आकार जो है वो क्या है, अग्नि है, उकार जो है वो क्या है, कहने लगे आदित्य है, और दोनों के मध्य में जो स्थिति है वो क्या है, कहा वो जल है, और जल के द्वारा ही ये सब सत्तान्वित होते हैं। जो भी जगत में पदार्थ सत्तान्वित दिखलाई दे रहे वो जल के द्वारा होते, लेकिन इनमें विद्युतीकरण आदि करके होते, तो इनमें भी जो हम संसार का रूप देख रहे हैं, जहां पर हम जो है अग्नि मान रहे, आदित्य मान रहे, पृथ्वी मान रहे, देव मान रहे, का इनमें भी आपको क्रम से आकार उकार की भावना करनी, माने आकार से ही ये सब होने वाला है और ये उकार से होने वाला है, ऐसे ही मकार आदि का क्रम बतलाएंगे। तो इस प्रकार से यहां पर इस उपासना में ओम को और इन अधिलोक आदि अधिकरण अर्थ में जो है उस उपासना के करने का विधान किया गया। जब ये उपासना करता है तब ऐसा उपासक ये उपासना कर लेगा और पांचों अधिकरणों को इस रूप में देख लेगा, तो उसकी दृष्टि में क्या भावना बनेगी, तब उसकी दृष्टि में भावना बनेगी कि जिनको हम नाना प्रकार से देख रहे हैं, नाना समझ रहे हैं, ये सब तो ओम से होने वाले हैं और ओम रूप ही, तभी तो कह सकोगे ओम इदेकाक्षरम ब्रह्म, इसलिए ओम ही ब्रह्म है, और यही नहीं ओम इतीदम सर्वम, यह जो कुछ भी है वो ओम ही है, तब ये कहने में समर्थ होगे, उससे पहले करने में समर्थ नहीं होगे। तो उस ओम से ही ये सब कुछ हुआ, तो ओम से हुआ, और उससे आगे कहने वाले छंदसा अमृत करके है ना, तो क्या कहेंगे, ब्रह्मणा कोशोसी, यह ओम ही ब्रह्म का कोष है, आवरण है, माने अत्यंत समीप ही है। तो जहां पर उपाधि को लेकर के स्वीकार करते हैं ब्रह्म को है, जिसे अपर ब्रह्म कहते हो या ईश्वर आदि नाम देते हो, तो वहां पर ये सब स्थिति है, वहां तक ये बतलाया, और उसी से ये सब कुछ है और वही सर्वरूप है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं। कैसे, उदाहरण के लिए, जैसे एक कोई सूत्रधार और तमाशा करता है, लेकिन सूत्रधार जब तमाशा करता है तो जो जो क्रिया करता है, जो जो चेष्टा करता है, और उन सारी चेष्टाओं के द्वारा नानात्व प्रदर्शित करता है, और नानात्व को प्रदर्शित करते हुए वास्तव में क्या होता, कहने लगे वो सब करते हुए भी उन चेष्टाओं से, उन चेष्टाओं के द्वारा होने वाले विकारों से, उन विकारों के द्वारा होने वाले हर्ष शोक आदि से वो सर्वथा रहित होता है। जैसे सूत्रधार तमाशा जब करता है तो वो सूत्रधार जो है सारी चेष्टाएं आदि करते हुए सारी चेष्टाओं के विकारों से शोक और हर्ष उसे होता नहीं, उनसे सर्वथा रहित होता है, उन चेष्टाओं से भी रहित होता है, लेकिन जैसे सूत्रधार की स्थिति होती है, कहने लगे वैसे ही इस परमात्मा, या दूसरे रूप से यूं समझें, जैसे जादूगर, और जादूगर जो है क्या करता है, जब अपनी जादूगिरी दिखलाता है, नाना प्रकार के हैं रूपों को वो प्रदर्शित करता है, और प्रदर्शित जब करता है तब कैसे करता है, कहने लगे उस पर एक झोली होती या एक टोकरी होती है, उस टोकरी में से ही वह नाना प्रकार के पदार्थों को निकाल के आपको दिखा देता, नाना प्रकार की क्रियाएं करके दिखला देता, और सारी क्रियाएं करता हुआ, और वो टोकरी भी है तो टोकरी वह जादूगर नहीं, ध्यान रखना जादूगर टोकरी नहीं, टोकरी तो उसके साथ में है तो इसके लिए एक उपाधि है, झोली समझो टोकरी समझो, तो उपाधि है, और उपाधि में ही सारे के सारे जो है उन रूपों को वह रखे है, उन्हीं में से दिखलाता है, और फिर जब जादूगर दिखलाता लोग हर्षित आदि होते हैं, नाना प्रकार का आश्चर्य करते हैं और फिर क्या करता है, उसी टोकरी में भर देता और स्वयं जैसे का दिखलाते हुए भी वो जैसे का तैसा था, दिखलाने से पहले भी जैसे का तैसा था और फिर टोकरी में बंद कर दिया तो भी जैसे का। टोकरी में बंद कर देना इसी को प्रलय कह देते और दिखलाने का समय सृष्टि कह देते। तो जो सृष्टि करते समय भी वह माया की उपाधि ही उसकी टोकरी है, उस माया की उपाधि में ही सबको जो है वो भरे हुए हैं और माया की उपाधि से ही सबको दिखा देता। तो इस अज्ञान के अंतर्गत ही ये सारी क्रियाएं हैं। और जहां पर जब इस प्रकार से ओम की उपासना की और उपासना में जो है इन अधिकरणों को लेकर के उपासना करते हुए समझा कि ओम ही सब कुछ है, उससे भिन्न कुछ नहीं, माने उस टोकरी में ही सब कुछ है, टोकरी से भिन्न कुछ भी, तो ये जब समझ लेते हैं तो ऐसा समझने पर हमें ज्ञान हो गया। और ज्ञान हो गया तो अज्ञान में ये सब है, उस जादूगर में कुछ नहीं। और जैसे ये होता है तो इस ज्ञान के द्वारा वो अज्ञान की भी उपाधि की भी निवृत्ति होती, क्योंकि उपाधि जो है यथार्थ नहीं है, वास्तविक नहीं है, वास्तविक तो स्वयं है जो अधिष्ठान करके। और ऐसा ज्ञान हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, तब उसका मोक्ष होता है। और इतना जब तक नहीं है तब तक उसके लिए कर्म है, भावना है, उपासना है, और उस उपासना ज्ञान भावना के अनुसार उसे फल मिलेगा, ये सब होगा। लेकिन जो है जब उसको लक्ष्य ये करना है कि मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तब उसे इस प्रकार से उपासना करनी है और उस उपासना से अंतःकरण को शुद्ध करते हुए और फिर तत्त्वमसी महावाक्य आदि का शोधन करते हुए और जब जब वो है यह विवेक करते हुए और ये उनका भाग त्याग करते हुए उपाधि को लेकर के जो वाच्यार्थ था उसका त्याग कर देता है और केवल जो रह जाता है लक्ष्यार्थ उसको जब ग्रहण कर लेता है तब उसके जीवन में क्या आता, तो उसी के लिए वेदों के चारों वाक्य फिर क्या कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म तत्त्वमसि, तब ये फलित होता है। और ये जब वाक्य जो है तब साक्षात्कार करा देते तब उसके जीवन में मोक्ष की स्थिति आती है। तो इस प्रकार से यहां पर ये संकेत लक्ष्य ये है, उसी लक्ष्य को लेकर के अधिकरणों का आश्रय लेकर के ओंकार को ही सर्वरूप बतलाते हुए उस ओंकार की सर्वरूप से उपासना का विधान यहां किया गया, उनको अधिकरणों से समझाया गया। तो कहा अग्नि जो है पूर्व वर्ण है और आदित्य जो है वो उत्तर वर्ण है और आप जो है जल जो है वो संधि है और कहने लगे विद्युत उस संधान कराने वाला है। संधि कराने वाला कौन है, संधि कब होगी, तो कहा विद्युत के द्वारा, जैसे वहां शब्दोच्चारण के द्वारा संधि होती, शब्दोच्चारण के बल से संधि होती है, यहां पर विद्युत के बल से संधि होगी और पृथ्वी देव में वायु के बल से संधि होगी, तो इसलिए उन्हें जो है संकेत कर दिया। ऐसे ही आगे संकेत करते हैं, आगे फिर कहा कि भाई ये तो अधिज्योतिष हो गया, अब वो आगे अधिविद्य की चर्चा कर रहे हैं, जो अधिविद्य अधिकरण है। तो अधिविद्य में बतला रहे हैं यहां पर क्या भावना करनी है, तो यहां पर भावना करते हुए बतलाया कि भाई आचार्य जो है वो क्या है, कहा पूर्व रूपम, पूर्व रूप है आचार्य, उत्तर रूप है शिष्य, अंतेवासी करके कह दिया अर्थात शिष्य, और संधि क्या है, कहा विद्या, और संधि कराने वाला संधान संधि का करने वाला कौन है, तो कह दिया कि वो है प्रवचन, प्रवचनम संधानम, अर्थात मने आचार्य को हमने पूर्व रूप माना और जो है शिष्य को उत्तर रूप माना, तो अवर्ण और उवर्ण और उन दोनों की संधि को विद्या माना और उसका विद्या का संधान कब होगा, तो कहने लगे वो संधि कब होगी, संधान माने संधि कराना, तो वो कब होगी, तो कहने लगे प्रवचन के द्वारा, अर्थात इसका तात्पर्य ये है जैसे आचार्य और शिष्य जब तक उनमें प्रश्न और उत्तर नहीं होगा वो अपने संशय के अनुसार प्रश्न करेगा और तद अनुकूल आचार्य उत्तर देगा, और जब प्रश्न उत्तर जब देगा तो ये जब प्रक्रिया होगी तो इसके द्वारा क्या होगा, विद्या होगी। विद्या का उदय होगा, ज्ञान का उदय होगा, इसलिए विद्या संधि है। तो और पूर्व और पर रूप आचार्य कह दिया, तो इन दोनों के माध्यम से जो विद्या होगी वह विद्या ही क्या करेगी फिर, कहा अविद्या की निवृत्ति कराएगी। तो यहां पर अधिकरण रूप से बतलाया कि अकार ही जो है आचार रूप मानो, और जो है उकार जो है वो है क्या शिष्य रूप मानो, और उसमें प्रश्नोत्तर जो है इनके द्वारा जो है प्रश्नोत्तर है वो क्या है, वो संधान करने वाला है अथवा संधि कराने वाला वल है, और जो है संधि है तो क्या है विद्या रूपी संधि। तो जब तक इन दोनों का इस प्रकार से परस्पर वार्तालाप नहीं होता तब तक कोई विद्या भी नहीं निकलती, सिद्धांत कोई नहीं आता, इसलिए इस प्रकार से यहां बतला रहे हैं। तो ऐसे इन अधिकरणों के द्वारा भी उस ओम की ही सर्वरूपता को बतलाते हुए संकेत करते हुए और उसकी उपासना का यहां विधान करते हैं। और जब ओम को सर्वरूप में उपासित करेंगे तो फिर हमारी स्थिति कहां पहुंचेगी, तो कहने लगे तब ये जो अनेकत्व दिखाई दे रहा है और उसमें एक की भावना होगी कि वो ओम ही है। और ओम क्या है, कहा वो उस प्रणवो ही निर्दिष्टो ब्रह्म, वो जो ओम है वो उस ब्रह्म का अत्यंत समीपी, या ऊर्ध्वम उन्नयति इति ओंकारः, जो हमको ऊर्ध्व की तरफ अर्थात मूल की तरफ ले जाता है वही है ओंकार। तो इसलिए ओम की उपासना का वैशिष्ट्य बतलाते हुए और इस उपासना का उसकारी के लिए विशेष ध्यान दिया, और जब जब ऊर्ध्व की तरफ जाएगा तो उसे उसका साक्षात्कार होगा, और साक्षात्कार होगा तो संसार के बंधनों से वह मुक्त हो, ऐसा यहां पर वर्णन कर रहे। वह आगे चर्चा फिर भविष्य में।
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम्। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।